लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसियाई समुदाय उन युवा लोगों की इच्छाओं और आशंकाओं का स्वागत करें जो पौरोहित्य और धार्मिक जीवन में यीशु मसीह के मिशन की सेवा करने की बुलाहट महसूस करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार ये आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पापा पॉल षष्ठम के सभागार में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro percorso giubilare di catechesi su Gesù, che è la nostra speranza, oggi ci soffermiamo sull'avvenimento della sua nascita a Belém.
Priye bhaiyo evam behno, suprabhat. Yesu hamari asha, jayanti ki is tirth yatra ki dham shiksha mein, hum Bethlehem mein Yesu ke janm ki ghatna par chintan karenge. Sant Papa ki dham shiksha ko manyavar Jereldi ne aage padhte hue kaha, ईश्वर का पुत्र इतिहास में हमारे संग यात्रा के मित्र स्वरूप प्रवेश करते हैं। वे इसकी शुरुआत माता के गर्भ में रहते हुए ही शुरू करते हैं। सुसमाचार लेखक संत लूकस हमें बतलाते हैं कि जैसे ही वे गर्भ में आते हैं, वे नाजरेत से जकरियस और एलिजाबेथ के घर जाते हैं और उसके बाद गर्भ के अंतिम दिनों में नाजरेत से बेतलहम में जनगणना हेतु मरियम और योसेफ को राजा दाऊद के शहर में जाने को बाध्य होना पड़ता है, जहां योसेफ का जन्म हुआ था। लंबे समय की प्रतीक्षा किए जाने वाले मसीह सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र अपने को गिनती किए जाने देते हैं। उनका नाम किसी अन्य नागरिक की भांति गिना और लेखे की पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। वे अपने को सम्राट कैसर अगस्तुस के राजाज्ञा के अनुरूप समर्पित करते हैं, जो अपने को सारी पृथ्वी का स्वामी समझता है। लूकस यीशु के जन्म को एक सटीक तिथि, उचित समय और एक सटीक रूप से सांकेतिक भौगोलिक परिदृश्य में रेखांकित करते हैं, ताकि सार्वभौमिक और निश्चितता एक दूसरे का स्पर्श करे।
Dio che viene nella storia non scardina le strutture del mondo, ma vuole illuminarle e ricrearle dal di dentro.
ईश्वर जो इतिहास में प्रवेश करते, वे विश्व की रचनाओं को नष्ट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उन्हें प्रकाशित करते हुए आंतरिक रूप में उनका पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। बेतलहम का अर्थ रोटी का घर है। वहां बच्चे के जन्म का समय पूरा होता और मरियम द्वारा यीशु का जन्म होता है। स्वर्ग से उतरी रोटी दुनिया की भूख को मिटाती है। स्वर्गदूत गैब्रियल ने मुक्तिदाता राजा के जन्म की घोषणा महान निशानियों में की थी, देखिए आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर उन्हें अपने पिता का सिंहासन प्रदान करेंगे। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगी और उनके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। हालांकि यीशु का जन्म एक ऐसे रूप में हुआ जो एक राजा के लिए पूरी तरह से अभूतपूर्व था। वास्तव में जब वे वहां थे, मरियम के लिए बच्चे को जन्म देने का समय पूरा हो गया। उसने अपने एक पहलौठे को जन्म दिया। उसे उन्होंने कपड़े में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके पास सराय में कोई जगह नहीं थी। ईश्वर के पुत्र का जन्म राज घराने में नहीं होता है, बल्कि एक उस घर में जहां जानवरों को रखा जाता था।
Luca ci mostra così che Dio non viene nel mondo con proclami altisonanti, non si manifesta nel clamore, ma inizia il suo viaggio nell'umiltà.
Sant Lucas इस भांति हमारे लिए इस बात को प्रकट करने की चाह रखते हैं कि ईश्वर अपनी शान शौकत में इस दुनिया में प्रवेश नहीं करते हैं। वे अपने आने का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, लेकिन वे अपनी यात्रा की शुरुआत नम्रता में करते हैं। और कौन सर्वप्रथम इस घटना का साक्ष्य देने को आते हैं? वे चरवाहे होते हैं, वे अल्प संस्कृति के लोग हैं। जानवरों के साथ लगातार संपर्क के कारण उनसे दुर्गंध आती है। वे समाज के हाशिए में रहते हैं, इसके बावजूद उनके कार्य के मध्य ईश्वर अपने को लोगों के बीच प्रस्तुत करते हैं। ईश्वर उन्हें सर्वश्रेष्ठ सुसमाचार के धारक स्वरूप चुनते हैं, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। डरिए नहीं, देखिए, मैं आप सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता मसीह का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए एक पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। चरनी मस्ती से मिलन का एक स्थल है। वास्तव में इस तरह घटना के बाद ऐसा होता है जहां हम दुनिया के मुक्तिदाता, जिन्होंने सारी चीजों की सृष्टि की, उसके लिए स्थान नहीं मिलता है। इस प्रकार चरवाहों को पता चलता है कि पशुओं के लिए आरक्षित एक बहुत ही साधारण स्थान में बहुप्रतीक्षित मसीह का जन्म हुआ है, और वह उनके लिए एक उद्धारकर्ता, उनका चरवाहा बनने के लिए पैदा हुए हैं। यह समाचार उनके हृदय को आश्चर्यचकित महिमा और खुशी की घोषणा हेतु खोलता है। दूसरे अन्य लोगों से अलग, जो बहुत सारी चीजों में उलझे रहते हैं, चरवाहे अपने लिए सबसे जरूरी बात मुक्ति के उपहार का अनुभव करते हैं। ये नम्र और गरीब हैं, जो शरीर धारण की घटना का स्वागत करते हैं।
Chiediamo anche noi la grazia di essere come i pastori capaci di stupore e di lode dinanzi a Dio.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम भी अपने लिए चरवाहों की तरह बनने की कृपा मांगे, आश्चर्य और महिमा में ईश्वर के सामने आने की कृपा, और चीजों को अपने में वहन करने की योग्यता जो हमें दिया गया है। हमारी क्षमताएं, आदर्श, हमारी बुलाहट और वे लोग जिन्हें ईश्वर हमारे निकट लाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि वे हमारी दुर्बलताओं में बालक ईश्वर की असाधारण शक्ति को पहचानने में मदद करें, जो समस्त मानव के लिए आशा से भरी अपनी योजना के साथ संसार का नवनिकरण करने तथा हमारे जीवन को परिवर्तित करने हेतु आते हैं। धर्म शिक्षा समाप्ति के उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ किया और सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Domino vobiscum.
Et in spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedict.
Exocum et
usque in tempore. Aiutorum nostrum in nomine Dom.
Qui feci caelum et terra.
Medica vos omnipotens Deo Pater. Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वाटिकन के संत पापा पॉल सिस्टम सभागार में बुधवारी आम दर्शन समारोह के दौरान इतालवी भाषी तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें अपनी दैनिक प्रार्थना में शांति हेतु प्रार्थना और तपस्या करने की अपील की। संत पापा ने कहा, मैं उन कई देशों के बारे में सोचता हूँ जो युद्ध में है। भाइयों और बहनों, आइए हम शांति के लिए प्रार्थना करें। आइए हम शांति के लिए सब कुछ करें। यह मत भूलिए कि युद्ध एक हार है। हम लोगों को मारने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। शांति के रास्ते मिले। कृपया अपनी दैनिक प्रार्थना में शांति के लिए प्रार्थना करें। पीड़ित यूक्रेन, फिलिस्तीन, इसराइल, म्यांमार, उत्तरी कीवू, दक्षिण सूडान के बारे में सोचे। युद्ध में ये फंसे इतने सारे देश हैं। कृपया आइए हम शांति के लिए प्रार्थना करें। आइए हम शांति के लिए तपस्या करें। पीड़ित लोगों पर हमेशा नजर रखते हुए संत पापा ने फ्रांसीसी तीर्थयात्रियों को अपने अभिवादन में उन्हें ईश्वर से प्रार्थना करने हेतु प्रोत्साहित किया कि वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को विनम्र और खुला रखें, ताकि वे अपने भाइयों की पुकार सुन सकें और दुनिया की कमजोरियों और घावों में उनकी उपस्थिति को पहचान सकें। पोलिश तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए संत पापा ने उनसे कहा, वे उन लोगों में यीशु को देखें जो परित्यक्त और कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, बीमार, अकेले रहने वाले और बाढ़ के पीड़ितों को मदद करें और उन्हें प्रभु की ओर से आने वाली आशा प्रदान करें। अंत में संत पापा ने विश्वासियों को याद दिलाया कि परसों यानी 14 फरवरी संत सिरिल और संत मेथोडियस का पर्व दिवस है। वे स्लाव लोगों के बीच विश्वास लाने वाले पहले प्रचारक थे। उनकी गवाही सभी लोगों को सुसमाचार के वाहक और व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में नवीनीकरण के खमीर बनने में मदद करे। उधर वाटिकन प्रेस कार्यालय ने बुधवार को परम धर्म पीठ धर्म विधि समारोह के प्रमुख महाधर्माध्यक्ष डिएगो रावेली द्वारा हस्ताक्षरित मार्च और अप्रैल महीने के धार्मिक समारोहों का कार्यक्रम जारी किया, जिसकी अध्यक्षता संत पापा फ्रांसिस करेंगे। 5 मार्च राख बुधवार, संत पापा फ्रांसिस शाम 4:30 बजे रोम स्थित संत अनसेल्मो गिरजाघर में शुरू होने वाले एक तपस्या जुलूस का नेतृत्व करते हुए संत सबीना महागिरजाघर जाएंगे और वहां शाम 5 बजे पौत्र मिसा के दौरान राख पर आशीष व राख विलेपन की धर्म विधि सम्पन्न करेंगे। 9 मार्च चालीसा का पहला रविवार, स्वयं सेवकों के विश्व जयंती के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में सुबह 10:30 बजे पौत्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। 9 मार्च आध्यात्मिक साधना की शुरुआत, वाटिकन के संत पापा पोल षष्ठम सभागार में शाम 5 बजे संत पापा फ्रांसिस और रोमन कूरिया के सदस्य आध्यात्मिक साधना की शुरुआत करेंगे। 14 मार्च आध्यात्मिक साधना का समापन। संत पापा पोल षष्ठम सभागार में सुबह 9 बजे संत पापा फ्रांसिस और रोमन कूरिया के सदस्य आध्यात्मिक साधना का समापन करेंगे। 6 अप्रैल चालीसा का 5वां रविवार बीमारों और स्वास्थ्य की विश्व जयंती के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में सुबह 10:30 बजे पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। उधर शिकागो के कार्डिनल ब्लेस कुपिच ने संत पापा फ्रांसिस के संदेश का स्वागत किया है। वाटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में कार्डिनल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के धर्माध्यक्षों को लिखे पत्र में संत पापा फ्रांसिस द्वारा व्यक्त किए गए प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने प्रवासियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। पत्र में संत पापा ने कहा कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर निर्वासन के कार्यक्रम की शुरुआत के साथ होने वाले प्रमुख संकट की बारीकी से निरीक्षण किया है। इस संबंध में उन्होंने धर्माध्यक्षों के प्रयासों की सराहना करते हुए जोर दिया कि ख्रीस्तीय प्रेम कानूनी स्थिति की परवाह किए बिना सभी लोगों की गरिमा को मान्यता देने की मांग करता है। वाटिकन न्यूज से बात करते हुए कार्डिनल कुपिस ने कहा, मैं संत पापा फ्रांसिस की भविष्यवाणी की गवाही की गहराई से सराहना करता हूं। संत पापा ने स्पष्ट रूप से अमेरिकी धर्माध्यक्षों और कलीसिया के लिए प्रवासियों की गरिमा की सुरक्षा और वकालत को इस समय की प्रमुख तात्कालिकता के रूप में पहचाना है। कार्डिनल कुपिस ने कहा, मैं उन धर्माध्यक्षों के प्रति आभारी हूं, जिन्होंने बड़े पैमाने पर अंधाधुंध निर्वासन और अप्रवासियों के अपराधीकरण की आलोचना की है। साथ ही सभी धर्माध्यक्ष एक साथ चलने और हमारे देश में प्रवासियों की मानवीय गरिमा की रक्षा करने की चुनौती ली है। विदित हो कि 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ने अप्रवास से संबंधित कार्यकारी आदेशों की एक श्रृंखला की घोषणा की है, जो अमेरिका में अनिर्दिष्ट प्रवासियों पर नकेल कसने के व्यापक प्रयास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उधर गाजा इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते के अनुपालन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। हमास को शनिवार दोपहर तक बंधकों को रिहा करना होगा, अन्यथा युद्ध होगा। यह इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा दी गई अंतिम चेतावनी है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2 दिन पहले दी गई धमकी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि अगर हमास ने इसराइली बंधकों की रिहाई में बाधा डाली तो उन्हें नरक मिलेगा। फिलिस्तीनी आंदोलन के नेताओं ने दोहराया कि हमास युद्ध विराम समझौते के लिए प्रतिबद्ध है तथा समझौतों के क्रियान्वयन में किसी भी जटिलता या देरी के लिए सारा दोष इसराइल पर मढ़ा, इसलिए यह युद्ध विराम समझौता लगातार कमजोर होता जा रहा है। दरअसल टाइम ऑफ इंडिया इसराइल अखबार की रिपोर्ट के अनुसार इसराइली सेना की दक्षिणी कमान हमास के साथ युद्ध विराम समझौते के विफल होने की स्थिति में पट्टी के लिए युद्ध योजनाओं को मंजूरी दे रही है। उधर यूक्रेन अमेरिकी प्रतिनिधियों से मिलने के लिए तैयार है और वार्ता जल्द शुरू होगी, यह यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का मानना है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा वाशिंगटन में आमंत्रित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।